आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
मंटो का अफसाना, चोरी। स्कूल के तीन चार लड़के अलाव के इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए और उस बूढ़े आदमी से जो टाट पर बैठा अपने उस्तुखवानी हाथ तापने की खातिर अलाव की तरफ बढ़ाए था, कहने लगा, बाबा जी कोई कहानी सुनाइए। मर्दे मुअम्मर ने जो गालिबन किसी गहरी सोच में गर्क था अपना भारी सिर उठाया जो गर्दन की लागरी की वजह से नीचे को झुका हुआ था। कहानी? मैं खुद एक कहानी हूं, मगर इसके बाद के अल्फाज उसने अपने पोपले मुंह ही में बड़बड़ाए। शायद वो उस जुमले को लड़कों के सामने अदा करना नहीं चाहता था जिनकी समझ इस काबिल ना थी कि वो फलसफियाना निकात हल कर सके। लकड़ी के टुकड़े एक शोर के साथ जल जल कर आतशी शिकम को पुर कर रहे थे। शोलों की नाबी रोशनी लड़कों के मासूम चेहरों पर एक अजीब अंदाज में रक्स कर रही थी। नन्नी नन्नी चिंगारियां सफेद राख की नकाब उलट उलट कर हैरत में सर बुलंद शोलों का मुंह ताक रही थी। बूढ़े आदमी ने अलाव की रोशनी में से लड़कों की तरफ निगाहें उठाकर कहा, कहानी? हर रोज कहानी, कल सुनाऊंगा। लड़कों के तमतमाते हुए चेहरों पर अफसुर्दगी छा गई। ना उम्मीदी के आलम में वो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, गोया वो आंखों ही आंखों में कह रहे थे, आज रात कहानी सुने बगैर सोना होगा। यकायक उनमें से एक लड़का जो दूसरों की बनिस्बत बहुत होशियार और जहीन मालूम होता था अलाव के करीब सरक कर बुलंद आवाज में बोला, मगर कल आपने वादा किया था और वादा खिलाफी करना दुरुस्त नहीं। क्या आपको कल वाले हामिद का अंजाम याद नहीं है जो हमेशा अपना कहा भूल जाया करता था? दुरुस्त, मैं भूल गया था। बूढ़े आदमी ने यह कहकर अपना सिर झुका लिया जैसे वो अपनी भूल पर नादिम है। थोड़ी देर के बाद वो इस दलेर लड़के की जुर्रत का ख्याल करके मुस्कुराया, मेरे बच्चे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मगर मैं कौन सी कहानी सुनाऊं? ठहरो, मुझे याद कर लेने दो। ये कहते हुए वो सिर झुकाकर गहरी सोच में गर्क हो गया। उसे जिन और परियों की ला यानी दास्तानों से सख्त नफरत थी। वो बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाया करता था जो उनके दिलो दिमाग की इसलाह कर सके। उसे बहुत से फजूल किस्से याद थे जो उसने बचपन में सुने थे या किताबों में पढ़े थे, मगर उस वक्त वो अपने बरबते पीरी के बोसीदा तार छेड़ रहा था कि शायद इनमें कोई ख्वाबीदा राग जाग जाए। लड़के बाबा जी को खामोश देखकर आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। गालिबन उस लड़के की बाबत जिसे किताब चुराने पर बेत की सजा मिली थी। बातों बातों में उनमें से किसी ने बुलंद आवाज में कहा, मास्टर जी के लड़के ने भी तो मेरी किताब चुरा ली थी, मगर उसे सजा वजा ना मिली। किताब चुरा ली थी? इन चार लफ्जों ने जो बुलंद आवाज में अदा किए गए थे बूढ़े की खुफ्ता याद में एक वाकया को जगा दिया। उसने अपना सफेद सिर उठाया और अपनी आंखों के सामने भूली बिस्तरी दास्तान को अंगड़ाइयां लेते पाया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में चमक पैदा हुई, मगर वहीं गर्क हो गई। इस्तराब की हालत में उसने अपने नहीफ जिस्म को जुम्बिश देकर अलाव के करीब किया। उसके चेहरे के तगैयर और तबद्दुल से साफ तौर पर आया था कि वो किसी वाकये को दोबारा याद करके बहुत तकलीफ महसूस कर रहा था। अलाव की रोशनी बदस्तूर लड़कों के चेहरों पर नाच रही थी। दाफतन बूढ़े ने आखिरी इरादा करते हुए कहा, बच्चों आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा। लड़के फौरन अपनी बातें छोड़कर हमातन होश हो गए। अलाव की चटकती हुई लकड़ियां एक शोर के साथ अपनी अपनी जगह पर उभर कर खामोश हो गई। एक लम्हे के लिए फिजा पर मुकम्मल सुकूत तारी हो रहा। बाबा जी अपनी कहानी सुनाएंगे? एक लड़के ने खुश होकर कहा। बाकी सरक कर राख के करीब खामोशी से बैठ गए। हाँ अपनी कहानी, ये कहकर बूढ़े आदमी ने अपनी झुकी हुई घनी भवों में से कोठड़ी के बाहर तारीकी में देखना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद वो लड़कों से फिर मुखातिब हुआ, मैं आज तुम्हें अपनी पहली चोरी की दास्तान सुनाऊंगा। लड़के हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उन्हें इस बात का वहम गुमान भी ना था कि बाबा जी किसी जमाने में चोरी भी करते रहे हैं। बाबा जी जो हर वक्त उन्हें बुरे कामों से बचने के लिए नसीहत किया करते हैं। लड़का जो इनमें दिलेर था अपनी हैरत ना छुपा सका। पर क्या आपने वाकई चोरी की?
वाकई।
आप उस वक्त किस जमात में पढ़ते थे?
9वीं में।
यह सुनकर लड़के की हैरत और भी बढ़ गई। उसे अपने भाई का ख्याल आया जो 9वीं जमात में तालीम पा रहा था। वो इससे उम्र में दोगुना बड़ा था। उसकी तालीम इससे कहीं ज्यादा थी। वो अंग्रेजी की कई किताबें पढ़ चुका था और उसे हर वक्त नसीहतें किया करता था। ये क्यों कर मुमकिन था कि इस उम्र का और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का चोरी करे? उसकी अक्ल इस मुअम्मे को हल ना कर सकी। चुनांचे उसने फिर सवाल किया,
आपने चोरी क्यों की?
इस मुश्किल सवाल ने बूढ़े को थोड़ी देर के लिए घबरा दिया। आखिर वो इसका क्या जवाब दे सकता था कि फला काम उसने क्यों किया? बज़ाहिर इसका जवाब यही हो सकता था, इसलिए कि उस वक्त उसके दिमाग में यही ख्याल आया। उसने दिल में यही जवाब सोचा, मगर उसने मुतमईन ना होकर यह बेहतर ख्याल किया कि तमाम दास्तान मिनोवन बयान कर दे।
इसका जवाब मेरी कहानी है जो अब मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं।
सुनाइए। लड़के उस बूढ़े आदमी की चोरी का हाल सुनने के लिए अपनी अपनी जगह पर जमकर बैठ गए। जो अलाव के सामने अपने सफेद बालों में उंगलियों से कंघा कर रहा था और जिसे वो एक बहुत बड़ा आदमी ख्याल करते थे। बुढ़ा कुछ अरसे तक अपने बालों में उंगलियां फेरता रहा, फिर उस भूले हुए वाक्य के तमाम मुंतशिर टुकड़े फरहाम करके बोला,
हर शख्स ख्वा वो बड़ा हो या छोटा, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादिम रहता है। मेरी जिंदगी में सबसे बुरा फेल एक किताब की चोरी है।
ये कहकर वो रुक गया। उसकी आंखों में चमक, उसकी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थीं, धुंधली पड़ गई। उसके चेहरे की तब्दीली से साफ जाहिर था कि उस वाकये को बयान करते हुए जबरदस्त जहनी तकलीफ का सामना कर रहा था। चंद लम्हात के तवक्कुफ के बाद वो फिर बोला,
सबसे मखरू फेल किताब की चोरी है। ये मैंने एक कुतुब फरोश की दुकान से चुराई। ये उस जमाने का जिक्र है जब मैं 9वीं जमात में तालीम पाता था। कुदरती तौर पर जैसा कि अब तुम्हें कहानी सुनने का शौक है, मुझे अफसाने और नॉवेल पढ़ने का शौक था। दोस्तों से मांगकर या खुद खरीद कर मैं हर हफ्ते एक ना एक किताब जरूर पढ़ा करता था। वो किताबें उमूमन इश्क मोहब्बत की बेमानी दास्तानें या फजूल जासूसी किस्से हुआ करते थे। ये किताबें मैं हमेशा छुप छुप कर पढ़ा करता था। वालिदैन को इस बात का इल्म ना था, अगर उन्हें मालूम होता तो वो मुझे ऐसा हरगज हरगज ना करने देते, इसलिए कि इस किस्म की किताबें स्कूल के लड़के के लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। मैं उनके मोहलिक नुकसान से गाफिल था, चुनांचे मुझे इसका नतीजा भुगतना पड़ा। मैंने चोरी की और पकड़ा गया।
एक लड़के ने हैरत सदा होकर कहा, आप पकड़े गए?
हाँ, मैं पकड़ा गया। चूंकि मेरे वालदैन इस वाकये से बिल्कुल बेखबर थे, ये आदत पकते पकते मेरी तबीयत बन गई। घर से जितने पैसे मिलते हैं उन्हें जोड़ जोड़ कर बाजार से अफसानों की किताबें खरीदने में सर्फ कर देता। स्कूल की पढ़ाई से रफ्ता रफ्ता मुझे नफरत होने लगी। हर वक्त मेरे दिल में यही ख्याल समाया रहता कि फला किताब जो फला नॉवेल नवीस ने लिखी है जरूर पढ़नी चाहिए, या फला कुतुब फरोश के पास नई नॉवलों का जो जखीरा मौजूद है एक नजर जरूर देखना चाहिए। शौक की ये इंतहा दूसरे मानों में दीवानगी है। इस हालत में इंसान को मालूम नहीं होता कि वो क्या करने वाला है या क्या कर रहा है। उस वक्त वो बेअकल बच्चे के मानिंद होता है जो अपनी तबीयत खुश करने का शौक पूरा करने के लिए जलती हुई आग में भी हाथ डाल देता है। उसे यह पता नहीं होता कि चमकने वाली शय जिसे वो पकड़ रहा है उसका हाथ जला देगी। ठीक यही हालत मेरी थी। फर्क इतना है कि बच्चा शूर से महरूम होता है, इसलिए वो बगैर समझे बुझे बुरी से बुरी हरकत कर बैठता है, मगर मैंने अकल का मालिक होते हुए चोरी ऐसे मखरू जुर्म का इर्तकाब किया। ये आंखों की मौजूदगी में मेरे अंधे होने की दलील है। मैं हरगिज ऐसा काम ना करता अगर मेरी आदत मुझे मजबूर ना करती। हर इंसान के दिमाग में शैतान मौजूद होता है जो वक्तन फवक्तन उसे बुरे कामों पर मजबूर करता है। ये शैतान मुझ पर उस वक्त गालिब आया जबकि सोचने के लिए मेरे पास बहुत कम वक्त था। खैर, लड़के खामोशी से बूढ़े के हिलते हुए लबों की तरफ निगाहें गाड़े उनकी दास्तान सुन रहे थे। दास्तान का तसलसल उस वक्त टूटता देखकर जबकि असल मकसद बयान किए जाने वाला था وہ بڑی بےقراری سے بقایا تفصیل کا انتظار کرنے لگی۔
مسعود بیٹا، یہ سامنے والا دروازہ تو بند کر دینا، سرد ہوا آ رہی ہے۔
بوڑھے نے اپنا کمبل گھٹنوں پر ڈال لیا۔ مسعود اچھا بابا جی کہہ کر اٹھا اور کوٹھڑی کا دروازہ بند کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔
ہاں تو ایک دن جب کہ والد گھر سے باہر تھے،
بوڑھے نے اپنی داستان کا بقایا حصہ شروع کیا،
مجھے بھی کوئی خاص کام نہ تھا اور وہ کتاب جو میں ان دنوں پڑھ رہا تھا ختم ہونے کے قریب تھی، اس لیے میرے جی میں آئے کہ چلو اس قطب فروش تک ہو آئے جس کے پاس بہت سی جاسوسی ناولیں پڑی تھیں۔
میری جیب میں اس وقت اتنے پیسے موجود تھے جو ایک معمولی ناول کے دام ادا کرنے کے لیے کافی ہوں، چنانچہ میں گھر سے سیدھا اس کتب فروش کی دکان پر گیا۔ یوں تو اس دکان پر ہر وقت بہت سی اچھی اچھی ناولیں موجود رہتی تھیں، مگر اس دن خاص طور پر بالکل نئی کتابوں کا ایک ڈھیر باہر تختے پر رکھا تھا۔ ان کتابوں کے رنگ برنگ سرے ورق دیکھ کر میری طبیعت میں ایک ہیجان سا برپا ہو گیا۔ دل میں اس خواہش نے گدگدی کی کہ وہ تمام میری ہو جائیں۔ میں دکاندار سے اجازت لے کر ان کتابوں کو ایک نظر دیکھنے میں مشغول ہو گیا۔ ہر کتاب کے شوخ رنگ سرے ورق پر اس قسم کی کوئی نہ کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی، ناممکن ہے کہ اس کا مطالعہ آپ پر سنسنی تاری نہ کر دے۔ مصور اسرار کا لاسانی شاہکار، تمثیل، ہیجان، رومان سب یکجا، اس قسم کی عبارتیں شوق بڑھانے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے کوئی خاص توجہ نہ دی، اس لیے کہ میری نظروں سے اکثر ایسے الفاظ گزر چکے تھے۔ میں تھوڑا عرصہ کتابوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اس وقت میرے دل میں چوری کرنے کا خیال مطلقا نہ تھا، بلکہ میں نے خریدنے کے لیے ایک کم قیمت کی ناول چن کر الگ بھی رکھ لی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دل میں یہ ارادہ کر کے میں دوسرے ہفتے ناولوں کو دوبارہ دیکھنے آؤں گا، میں نے اپنی چنی ہوئی کتابیں اٹھائیں۔ کتاب کا اٹھانا تھا کہ میری نگاہیں ایک مجلد ناول پر پڑ گئی۔ سارے ورق کے کونے پر میرے محبوب ناولسٹ کا نام سرخ لفظوں میں چھپا تھا، اس کے ذرا اوپر کتاب کا نام تھا، منتقم شعائیں۔ کس طرح ایک دیوانے ڈاکٹر نے لندن کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا، یہ سطور پڑھتے ہی میرے اشتیاق میں طغیانی سی آ گئی۔ کتاب کا مصنف وہی تھا جس نے اس سے پیشتر مجھ پر راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ ناول کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں خیالات کا ایک گروہ داخل ہو گیا۔ منتخب شعائیں، دیوانے ڈاکٹر کی ایجاد، کیسا دلچسپ افسانہ ہوگا، لندن تباہ کرنے کا ارادہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، اس منصف نے فلا فلا کتابیں کتنی سنسنی خیز لکھی ہیں، یہ کتاب ضرور ان سب سے بہتر ہوگی۔ میں خاموش اشتیاق کے ساتھ اس کتاب کی طرف دیکھ رہا تھا اور یہ خیالات یخے بعد دیگرے میرے کانوں میں شور برپا کر رہے تھے۔ میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور کھول کر دیکھا تو پہلے ورق پر یہ عبارت نظر آئی، منصف اس کتاب کو اپنی بہترین تصنیف قرار دیتا ہے۔ ان الفاظ نے میرے اشتیاق میں آگ پر ایندھن کا کام کر دیا۔ ایک ایک ہی میرے دماغ کے خدا معلوم کس گوشے سے ایک خیال کود پڑا، وہ یہ کہ میں اس کتاب کو اپنے کوٹ میں چھپا کر لے جاؤں۔ میری آنکھیں بے اختیار کتب فروش کی طرف مڑی جو کاغذ پر کچھ لکھنے میں مشغول تھا۔ دکان کی دوسری طرف دو نوجوان کھڑے میری طرح کتابیں دیکھ رہے تھے۔ میں سر سے پیر تک لرز گیا۔
یہ کہتے ہوئے بوڑھے کا نحیف جسم اس واقعے کی یاد سے کانپا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر اس نے پھر اپنی داستان شروع کر دی۔
ایک لہجے کے لیے میرے دماغ میں خیال پیدا ہوا کہ چوری کرنا بہت برا کام ہے، مگر ضمیر کی آواز سارے ورق پر بنی ہوئی لامبی لامبی شعاؤں میں غرق ہو گئی۔ میرا دماغ منتخم شعائیں منتخم شعائیں کی گردان کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر جھانکا اور جھٹ سے وہ کتاب کوٹ کے اندر بغل میں دبا لی، مگر میں کانپنے لگا۔ اس حالت پر قابو پا کر میں کتب فروش کے قریب گیا اور اس کتاب کے دام ادا کر دیے جو پہلے میں نے خریدی تھی۔ قیمت لیتے وقت اور روپے میں سے باقی پیسے واپس کرنے میں اس نے غیر معمولی تاخیر سے کام لیا۔ میری طرف اس نے گھور کر بھی دیکھا، جس سے میری طبیعت سخت پریشان ہو گئی۔ جی میں بھی آئی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں سے بھاگ نکلوں۔ میں نے اس دوران میں کئی بار اس جگہ پر جو کتاب کی جگہ سے ابھری ہوئی تھی نگاہ ڈالی اور شاید اسے چھپانے کی بے سود کوشش بھی کی۔ میری ان عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ کر اسے شک ضرور ہوا۔ इसलिए कि वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करके फिर खामोश हो जाता था।
मैंने बाकी पैसे जल्दी से लिए और वहां से चल दिया। 200 कदम के फासले पर मैंने किसी की आवाज सुनी। मुड़कर देखा तो कुतुब फरोश नंगे पांव चला आ रहा था और मुझे ठहरने के लिए कह रहा था। मैंने अंधाधुन भागना शुरू कर दिया। मुझे मालूम न था मैं किधर भाग रहा हूँ। मेरा रुख अपने घर की जानिब न था। मैं शुरू ही सही उस तरफ भाग रहा था जिधर बाजार का इख्तिताम था। इस गलती का मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब 2-3 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया।
बूढ़ा इतना कहकर इस्तराब की हालत में अपनी खुश्क जबान लबों पर फेरने लगा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो एक लड़के से मुखातिब हुआ।
मसूद, पानी का एक घूंट पिलवाना।
मसूद खामोशी से उठा और कोठड़ी के कोने में पड़े हुए घड़े से गिलास में पानी उंडेल कर ले आया। बूढ़े ने गिलास लेते ही मुंह से लगा लिया और एक घूंट में सारा पानी पी गया और खाली गिलास जमीन पर रखते हुए कहा,
हाँ मैं क्या बयान कर रहा था।
एक लड़के ने जवाब दिया,
आप भागे जा रहे थे। हाँ, मेरे पीछे कुतुब फरोश चोर चोर की आवाज बुलंद करता चला आ रहा था। जब मैंने 2-3 आदमियों को अपना ताकुब करते देखा तो मेरे होश ठिकाने ना रहे। जेल की आनी सलाखें, पुलिस और अदालत की तस्वीरें एक एक करके मेरी आंखों के सामने आ गई। बेइज्जती के ख्याल से मेरी पेशानी अर्क आलूद हो गई। मैं लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उठना चाहा तो टांगों ने जवाब दे दिया। उस वक्त मेरे दिमाग की अजीब हालत थी। एक तुन धुआं सा मेरे सीने में करवटे ले रहा था। आंखें फरते खौफ से उबल रही थीं और कानों में एक जबरदस्त शोर बरपा था, जैसे बहुत से लोग आईनी चादरें हथौड़े से कूट रहे हैं। मैं भी उठकर भागने की कोशिश कर रहा था कि कुतुब फरोश और उसके साथियों ने मुझे पकड़ लिया। उस वक्त मेरी क्या हालत थी इसका बयान करना बहुत दुश्वार है। सैकड़ों ख्यालात पत्थरों की तरह मेरे दिमाग से टकरा टकरा कर मुख्तलिफ आवाजें पैदा कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो ऐसा मालूम हुआ कि आहनी पंजे ने मेरे दिल को मसल डाला है। मैं बिल्कुल खामोश था। वो मुझे दुकान की तरफ कशां कशां ले गए। जेल खाने की कोठड़ी और अदालत का मुंह देखना यकीनी था। इस ख्याल पर मेरे जमीर ने लानत मलानत शुरू कर दी थी। चूंकि अब जो होना था हो चुका था और मेरे पास अपने जमीर को जवाब देने के लिए कोई अल्फाज मौजूद ना थे, इसलिए मेरी गर्म आंखों में आंसू उतर आए और मैंने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया।
ये कहते हुए बूढ़े की धुंधली आंखें नमनाक हो गईं।
कुतुब फरोश ने मुझे पुलिस के हवाले ना किया, अपनी किताब ले ली और नसीहत करने के बाद छोड़ दिया।
बूढ़े ने अपने आंसू खुरदरे कंबल से खुश किए।
खुदा उसको जजाए खैर दे। मैं अदालत के दरवाजे से तो बच गया, मगर इस वाकये की वालिद और स्कूल के लड़कों को खबर हो गई। वालिद मुझ पर सख्त खफा हुए, लेकिन उन्होंने भी आखिर में मुझे माफ कर दिया। 2-3 रोज मुझे इस नदामत के बायस बुखार आता रहा। इसके बाद जब मैंने देखा मेरा दिल किसी करवट आराम नहीं लेता और मुझमें इतनी कुव्वत नहीं कि मैं लोगों के सामने अपनी निगाहें उठा सकूं, तो मैं शहर छोड़कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए रूपोश हो गया। उस वक्त से लेकर अब तक मैंने मुख्तलिफ शहरों की खाक छानी है, हजारों मसाइब बर्दाश्त किए हैं। सिर्फ उस किताब की चोरी की वजह से जो मुझे ता दमे मर्ग नादिमो शर्मसार रखेगी। इस आवारा गर्दी के दौरान में मैंने और भी बहुत सी चोरियां की, डाके डाले और हमेशा पकड़ा गया, मगर उन पर नादिम नहीं हूं, मुझे फख्र है।
बूढ़े की धुंधली आंखों में फिर पहली सी चमक नमूदार हो गई और उसने अलाव के शोलों को टकटकी बांध कर देखना शुरू कर दिया।
हाँ, मुझे फख्र है,
ये लफ्ज उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद दोबारा कहे। अलाव में आग का एक शोला बुलंद हुआ और एक लम्हा फिजा में थरथरा कर वहीं सो गया। बूढ़े ने शोले की जुर्रत देखी और मुस्कुरा दिया, फिर लड़कों से मुखातिब होकर कहने लगा,
कहानी खत्म हो गई, अब तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप इंतजार करते होंगे।
मसूद ने सवाल किया,
मगर आपको अपनी दूसरी चोरियों पर क्यों फख्र है?
फख्र क्यों है? बूढ़ा मुस्कुरा दिया, इसलिए कि वो चोरियां नहीं थी। अपनी मसरूखा चीजों को दोबारा हासिल करना चोरी नहीं होती मेरे अजीज, बड़े होकर तुम्हें अच्छी तरह मालूम हो जाएगा।
मैं समझा नहीं।
हर वो चीज जो तुमसे चुरा ली गई है तुम्हें हक हासिल है कि उसे हर मुमकिन तरीके से अपने कब्जे में ले आओ। पर याद रहे तुम्हारी कोशिश कामयाब होनी चाहिए, वरना ऐसा करते हुए पकड़े जाना और अजियतें उठाना बस है।
लड़के उठे और बाबा जी को शब बखैर कहते हुए कोठड़ी के दरवाजे से बाहर चले गए। बूढ़े की निगाहें उनको तारीखी में गुम होते देखती रही। थोड़ी देर इसी तरह देखने के बाद वो उठा और कोठड़ी का दरवाजा बंद करते हुए बोला,
काश कि ये बड़े होकर अपनी खोई हुई चीज वापस ले सके।
बूढ़े को खुदा मालूम उन लड़कों से क्या उम्मीद थी।